पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए सेकेंड ईयर AIHC पेपर थर्ड प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास चैप्टर अन्य हिंदू देवता और उनके संप्रदाय। विष्णु शिव और शक्ति के अतिरिक्त हिंदू धर्म में अनेक देवताओं का पूजन प्राचीन काल से प्रचलित रहा है, जिनका उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। इनमें गणपति, कार्तिकेय, सूर्य, अग्नि, ब्रह्म आदि देवताओं का हिंदू समाज में विशेष स्थान रहा है। अतः यहाँ उन देवताओं के विषय में विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम गणपति, गणपति संप्रदाय। गणपति का उल्लेख वेदों में हुआ है, जिनमें उनका नाम ब्राह्मण अस्पति मिलता है। ब्रह्मस्पति के अनेक मंत्रों में गणपति शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, जो कालांतर में आकर अधिक प्रचलित हुआ। वेदों में उन्हें महाहस्ती, एकदंत, वक्रतुंड और दंती भी कहा गया है। गणपति का शाब्दिक अर्थ है गण अर्थात समुदायों का स्वामी। इसी अर्थ के आधार पर उन्हें गणेश भी कहा गया है। विनायक नाम भी उनके लिए व्यवहित हुआ है, जो विचरने वाली आत्माओं के लिए प्रयुक्त होता है। मानव गृह सूत्र में विनायकों की विघ्नकारी गतिविधियों का परिचय दिया गया है। यही नहीं, याज्ञवल्य स्मृति भी विनायकों की विघ्नकारी प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराती है। रुद्र के अनेक गण हैं, जिनमें मरुत भी है, जिनके स्वामी गणपति हैं। शतरुद्रीय ऋचाओं में रुद्र के लिए ही गणपति और सेनानी शब्दों का व्यवहार किया गया है, जो उत्तर वैदिक युग में पृथक देवताओं के लिए प्रयुक्त होने लगा। पुराण काल में रुद्र शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए, जो क्रमशः गणपति और सेनानी के नाम से विख्यात हुए। गणेश्वरों और विनायकों का उल्लेख महाभारत में देवताओं के साथ हुआ है, जो मनुष्य के कार्य देखते परखते हुए सर्वत्र वर्तमान रहते हैं। मानव गृह सूत्र के अनुसार विनायकों की संख्या चार है, एक सालकंटकट, दूसरा कृष्णामंड राजपुत्र, तीसरा उष्मित और चौथा देव जयन। उनकी दयादृष्टि न होने पर तथा उनसे त्रसित होने पर मनुष्य का मस्तिष्क विकृत सा हो जाता है। वह नाना प्रकार के अस्वाभाविक कार्य करता है। कभी वह घास काटता है, कभी अपने शरीर पर लिखता है, कभी उड़ता हुआ अनुभव करता है, कोई उनका पीछा करने लगता है। ऐसे ग्रस्त और त्रस्त लोगों को विनायक की अकृपा से रक्षित करने के लिए तथा प्रीत व्यक्तियों को छुटकारा दिलाने के लिए चारों दिशाओं से लाए गए पानी और चारों दिशाओं से लाई गई मिट्टी से स्नान किया जाता है। तदुपरांत सरसों से तुरंत निकाले गए तेल से चारों विनायकों की पूजा के साथ आहुति दी जाती है, जिनमें धान, पकी कच्ची मछली, विभिन्न प्रकार की दालें आदि प्रस्तुत की जाती हैं। इस पूजन विधि से विनायकों की कुदृष्टि और विघ्नकारी प्रवृत्ति से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह का विवरण याज्ञवल्य की स्मृति में भी है। मनुष्य के कामों में विघ्न उपस्थित करने के लिए रुद्र और ब्रह्म ने विनायक को गणपति बनाया। गणपति के मित, समित, साल, कंटकट, कृष्णमांड और राजपुत ये छह नाम मिलते हैं। अंबिका को गणपति की माता बनाया गया है। मोदाग्ल पुराण में गणपति के गौ अक्षर को मनोवाणी में सकल दृश्या से जगत बोधक और नौ अक्षर को मनोवाणी विहीन रूप का बोधक तथा उसे के स्वामी को गणेश सर्वोच्च देवता के रूप में विवरित किया गया है। महागणपति, ऊर्ध गणपति, पिंगल गणपति आदि उनके विभिन्न रूप हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार गणपति शिव के द्वितीय पुत्र हैं, जो विघ्नों को समाप्त करते तथा जीवन को मंगलमय करते हैं। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में उनकी पूजा आवश्यक मानी गई। विघ्नकारी गणपति को विघ्नहारी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। गणों और विनायकों के विघ्नकारी रूप का उल्लेख बृहत संहिता में भी हुआ है। गणेश की मूर्तियाँ गुप्त काल में बननी प्रारंभ हुई, जो बाद तक बनती रही। उनकी मूर्तियाँ तीन मुद्राओं में मिलती हैं, खड़ी, बैठी और नृत्य करती हुई। ऐसी मूर्तियां भारत के विभिन्न स्थानों से मिली है। सभी मूर्तियों में गजमस्तक और बड़ा उदर चित्रित किया गया है। जिस प्रकार विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन बैल, दुर्गा का वाहन सिंह है, उसी प्रकार गणेश का वाहन मूषक है। समाज में गणपत्य संप्रदाय का भी प्रचलन हुआ, जिसमें गणेश की पूजा की जाती रही। गणपत्य संप्रदाय की सह शाखाएं दिग्दर्शित होती हैं। ये महागणपति के आराधक, जो गणपति को आदिदेव सृष्टिकर्ता मानते हैं। बी हरिद्र गणपति के उपासक, जो गणपति के मुख और दंत की मुद्रा अपने बाहों पर तपाए हुए लोहे से अंकित कराते हैं। इस शाखा में पीत वस्त्रधारी, यज्ञोपवीत पहने, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, हाथ में पास, कुश और दंडधारी गणेश की पूजा की जाती है। सी, उच्छिष्ट गणपति के आराधक तामसी और असत्य कार्यों के करने वाले होते हैं, मदिरा मांस आदि का सेवन करते हैं तथा अपने ललाट पर लाल मुद्रा अंकित करते हैं। डी, नवीनीत गणपति। ई, स्वर्ण गणपति तथा एफ, संतान गणपति। अंतिम तीन शाखाओं के आराधक गणपति की मूर्ति की प्रतिष्ठा करके पूजन करते हैं। सभी हिंदू परिवारों में आज भी गणपति की पूजा होती है। महाराष्ट्र में गणेश प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं। विद्यारंभ श्री गणेश से ही होता है। व्यास के बोलने पर महाभारत लेखन का कार्य गणेश ने स्वीकार किया था, किंतु यह भी तय किया गया था कि महर्षि व्यास धारा प्रवाह बोलेंगे ताकि गणेश को रुकना न पड़े। व्यास ने इसके साथ एक शर्त भी लगा दी थी कि गणेश बिना अर्थ समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। जब गणेश श्लोक का अर्थ समझने लगते थे तब व्यास को भावों को यथोचित रूप में व्यक्त करने का समय मिल जाता था। इससे व्यास को भाव तारतम्य बनाए रखने में सरलता हुई। अतः इस कथा के माध्यम से गणेश के ज्ञान और बुद्धि का परिचय प्राप्त होता है। स्कंद कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र थे। रामायण के अनुसार अग्नि ने गंगा का अभिषेक किया था, तदंतर स्कंद का जन्म हुआ था। गंगा द्वारा भ्रूण को हिमालय पर्वत पर फेंक दिए जाने पर उनका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। महाभारत में भी उनके पिता अग्नि कहे गए, किंतु उनकी माता का नाम भिन्न है। अग्नि की पत्नी स्वाहा उनकी माँ बताई गई है। यह भी कथा दी गई है कि जब इंद्र ने स्कंद पर वज्र प्रहार किया तब उनके दक्षिण पार्श्व से विशाख की उत्पत्ति हुई। लगता है स्कंद और विशाख को एक माने जाने लगा था। कालांतर में अग्नि को शिव का प्रतिरूप मानते हुए कार्तिकेय को शिव का पुत्र माना गया है। इसके अतिरिक्त कार्तिकेय को शिव का एक रूप और गोत्र प्रवर्तक स्वीकार किया गया। उसका वाहन मयूर माना गया जो जंगलों में रहता है। जंगलों में वहाँ के जीवों के स्वामी रुद्र और उनके गण हैं, इसलिए कार्तिकेय का शिव से संबंध स्थापित होना स्वाभाविक था। बाद में वे देवताओं के सेनानायक बन गए। पाणिनि ने भी शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियों का उल्लेख किया है। कुषाण शासक कनिष्क के कतिपय सिक्कों के पृष्ठ भाग पर स्कंदों, महासेनों, कुमारी और बिजागों यानी विशाख के तीन आकृतियां प्रतिकृत हैं। देवताओं की सेना का नायकत्व करने के कारण स्कंद महासेन के नाम से विख्यात हुए। स्कंद को कुमार भी कहा जाने लगा। लगता है विशाख नाम पहले किसी अन्य देवता का था जो बाद में स्कंद के साथ एकान्वित हो गया, किंतु मुद्रा पर उकीर्ण की गई तीन आकृतियां संभवतः किन्हीं तीन देवताओं की अभिव्यंजना करती है। पतंजलि ने महाभाष्य में स्कंद पूजा का संकेत किया है। कार्तिकेय को सर्वनुभव और सरजन्मा भी कहा गया जो उनके सर के वन में जन्म लेने के कारण प्रचलित था। कालिदास ने कुमार संभव में इनके जन्म से संबंधित कथा दी है। मयूर पर बैठी उनकी अनेक मूर्तियों का उल्लेख भी महाकवि ने किया है। देवगिरी पर स्कंद का एक मंदिर निर्मित हुआ था। गुप्त काल में स्कंद पूजा का विशेष प्रचलन हुआ। भिलासद में स्वामी महासेन यानी स्कंद के मंदिर की प्रतितोली ध्रुव शर्मा ने बनवाई थी। यही नहीं, गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के नाम से स्कंद का महत्व ध्वनित होता है। पुराणों में स्कंद के विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में उन्हें सुर सेनापति और सेनापति कहा गया है। स्कंद की उत्पत्ति में पुराणों में विवरित है कि इंद्र ने अग्नि को शिव और पार्वती की रति में विघ्न डालने के लिए भेजा। फलतः शिव का तेज अग्नि को सहना पड़ा और असह्य होने के कारण उसे गंगा को स्थानांतरित कर दिया। गंगा ने उस तेज को सर्वन नामक वन में रखा जहाँ स्कंद का जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में स्कंद को जहानवी सूत्र और संक्रात्मज दोनों नाम से अभिहित किया गया। ब्रह्मांड पुराण के एक स्तर पर उल्लिखित है कि शिव और पार्वती के संयोग से स्कंद का जन्म हुआ था। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार अग्नि द्वारा रति में विघ्न उपस्थित करने के कारण शंकर के तेज का अर्धांश पार्वती को न मिलकर आश्रम में स्खलित हो गया जो सरोवर बन गया। एक दिन पार्वती ने उस सरोवर का जल पी लिया जिससे स्कंद का जन्म हुआ। हिंदू समाज में स्कंद की पूजा शिव के साथ भी होती थी तथा स्वतंत्र रूप से भी। इस प्रकार की अनेक मूर्तियां समाज में गढ़ी गई। कदम्ब और योद्धेय वंश के शासक कार्तिकेय की पूजा करते थे। दक्षिण में सुब्रमण्य नाम से उनकी आराधना की जाती रही। देवसेना और बल्ली नामक उनकी दो पत्नियों का भी उल्लेख है। सूर्य और सौर संप्रदाय। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना ऋग्वैदिक युग से होती रही है, जिनका ऋग्वैदिक नाम सविता भी है। वसुतः वैदिक देवमंडल में उनका प्रमुख स्थान था, किंतु परवर्ती काल में आकर विष्णु, शिव और शक्ति की तुलना में उनका स्थान अपेक्षाकृत निम्न हो गया। ऋग्वैदिक काल में वे जगत के जंगम और स्थावर जीवों की आत्मा थे। वे 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते थे और जगत को प्रकाशित करते थे। उस युग में वे प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ रूप थे। कालांतर में आकर देश में उनका पूजन प्रारंभ हुआ, जो विजातियों के प्रभाव के कारण था। कुषाण युग में सूर्य की मूर्तियां भी बननी शुरू हो गई थी। ऐसी एक मूर्ति मथुरा के संग्रहालय में है, जिनकी बनावट और साज सज्जा पूर्णतः मध्य एशियाई है। वह कुषाण राजाओं की तरह सटा सलूका वेस्टकोट और घुटनों तक जूते पहने तथा कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, जो उनके कुषाण शासक होने का भ्रम उत्पन्न करता है। भविष्य पुराण के विवरण से विदित होता है कि कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने सिंध में चंद्रभागा तट पर सूर्य का पहला मंदिर निर्मित करवाया था। उस मूर्ति की पूजा के लिए शकद्वीप निवासी पुरोहित यानी मग पुजारी बुलाए गए थे। मग जाति के लोग ईरान के रहने वाले थे, जिन्होंने 30वीं सदी के लगभग भारत में आकर सूर्योपासना का प्रचार किया। यह उल्लेख इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के ब्राह्मण सूर्य पूजा के विधि विधान से संबंधतः अनभिज्ञ थे। इसलिए सूर्य पूजा में निपुण मध्य एशियाई शकद्वीपी पुजारी सूर्य पूजा संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किए गए थे। इस प्रकार भारत में शाकलद्वीपी नामक ब्राह्मणों का एक अलग वर्ग बन गया। चंद्रभागा यानी चिनाब के तट पर मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख स्वान चांग ने भी किया है। उसके अनुसार यह मूर्ति स्वर्ण निर्मित तथा बहुमूल्य पदार्थों से अलंकृत थी। हर्ष के जन्म के अवसर पर जो ज्योतिषी बुलाए गए थे, उनमें तारक नामक भोजक ज्योतिषी भी था। भोजक का अर्थ है मग, जो सूर्य की पूजा किया करते थे। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर गरुड़ शकद्वीपी ब्राह्मणों को सूर्य पूजा के निमित्त ले आया, जिनके पूजन से उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। ब्राह्मीर के अनुसार सूर्य पूजा के लिए मगों को ही पुजारी बनाया जाता था। कालिदास ने सूर्य के उपस्थापन का वर्णन किया है। रघुवंश में सूर्य के 7 हरे अश्वों का उल्लेख है। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में रेशम बुनने वालों के संघ के मदसौर के निकट दसपुर में एक सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तत्कालीन सूर्य की मूर्ति की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जो मथुरा संग्रहालय, भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि में रखी है। हुन शासक तोरमन और मिहिरकुल सूर्य की पूजा करने वाले थे। मिहिरकुल ने सूर्य देवता के मंदिर का निर्माण करवाया था। पूर्व मध्ययुगीन अनेक उल्लेखों से विदित होता है कि तत्कालीन समाज में सूर्य पूजा में आस्था रखने वाले लोग थे, जिन्होंने सूर्य मंदिर से कोई बात नहीं, जहाँ से मन हुआ वहीं से कर देते हैं। हुन शासक तोरमन और मिहिरकुल सूर्य की पूजा करने वाले थे। मिहिरकुल ने सूर्य देवता के मंदिर का निर्माण करवाया था। पूर्व मध्ययुगीन अनेक उल्लेखों से विदित होता है कि तत्कालीन समाज में सूर्य पूजा में आस्था रखने वाले लोग थे, जिन्होंने सूर्य मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया था। थानेश्वर के राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन जैसे शासक सूर्योपासक थे। उदय सिंह का भीममल अभिलेख सूर्य की पूजा से प्रारंभ होता है। मुल्तान के जिस सूर्य मंदिर का उल्लेख किया गया है, उसके विषय में अलवरनी का कथन है, सूर्य की वह सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी जो आदित्य कहलाती थी। वह लकड़ी की थी और लाल चमड़े से ढकी थी। उनकी दोनों आँखों में 2 लाल पद्मराग थे। यह कहा जाता है कि वह पिछले कृत युग में बनी थी। अलबरनी के अतिरिक्त मसूदी 10वीं सदी के प्रारंभ में, इंतखरी 10वीं सदी एवं इब्न हौकल 10वीं सदी आदि अनेक मुसलमान लेखक ने मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का विवरण स्कंद पुराण में भी मिलता है, जो देविका तट पर स्थित था। 13वीं सदी में निर्मित उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर अत्यंत भव्य और विशाल है। इंद्रादित्य, लोलार्क, भास्कर, आदित्य, वरुण स्वामी, मार्तंड आदि सूर्य के विभिन्न नाम अभिलेखों में मिलते हैं, जो उनके सहस्त्र नामों में से हैं। शौर संप्रदाय के अनुयायी मस्तक पर लाल चंदर की सूर्य आकृति बनाते हैं, लाल पुष्पों की माला पहनते हैं तथा सूर्य की उपासना करते हैं। वे प्रातः और सायं सूर्य की पूजा करते हैं तथा रविवार के दिन व्रत रखते हैं। ऊपर के संक्षिप्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि समाज में सूर्य की पूजा करने वालों की कमी नहीं थी। ब्रह्म देवता तथा अन्य हिंदू देवता। हिंदू धर्म में जगत सृष्टा के रूप में ब्रह्म का स्थान प्रमुख है। विष्णु और महेश के साथ ब्रह्म, विष्णु और महेश 3 विशिष्ट देवता माने जाते हैं, जो क्रमशः सृष्टिकर्ता, सृष्टिपालक और सृष्टि संहारक के रूप में पूजित हैं। अत्यंत प्राचीन काल में ब्रह्म को प्रजापति कहा जाता था, किंतु गृह सूत्रों के काल में प्रजापति को ब्रह्म कहा जाने लगा। इस प्रकार प्रजापति को ब्रह्म के नाम से एकीकृत किया गया। कालांतर में ब्रह्म को भी जगत के सृष्टा के रूप में स्वीकार किया गया तथा अत्यंत प्रारंभ में प्रजापति का भी प्रधान कर्म जगत का सृजन करना था, इसलिए प्रवर्ती काल में प्रजापति और ब्रह्म एक हो गए। ऋग्वेद के अनुसार प्रजापति समस्त जीवों का स्वामी एवं देवोपरि देव था। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को प्रजावर्ग का सृजनकर्ता माना गया है। उसी ग्रंथ में एक स्थल पर उन्हें वाराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करते हुए विवृत किया गया है। यही नहीं, वे सारे देवताओं के जनक थे तथा प्रारंभ में इस जगत में कुछ भी नहीं था, तब मात्र प्रजापति का ही अस्तित्व था। रामायण में ब्रह्म को लोककर्ता बनाया गया है। गुप्त काल तक आकर प्रजापति शब्द केवल ब्रह्म का ही बोधक रह गया था। पुराणों में ब्रह्म का समीकरण प्रजापति से ही किया गया है। वायु पुराण में ब्रह्मा ने विष्णु से कहा है कि सृष्टि के आदिकर्ता और प्रजापति वे ही हैं। प्रजा का पालन करने के कारण उन्हें प्रजापति की संज्ञा मिली थी। मत्स्य पुराण में भी उन्हें प्रजापति ही कहा गया है। कालिदास के अनुसार ब्रह्म स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले, चतुर्मुख, चार मुखों वाले, वागीश और समस्त संसार के सृष्टा हैं। जगत का सृजन, पालन तथा विनाश उन्हीं के द्वारा होता था। सत्व, रज और तम जैसे गुण उन्हीं में स्थित थे। सृष्टि के निमित्त उन्होंने अपने शरीर को पुरुष और नारी दो रूपों में विभाजित कर लिया था। विष्णु पुराण के अनुसार कृत युग के प्रारंभ में ही ब्रह्म सृष्टि करने की ओर प्रवृत्त थे। जिनके निमित्त उन्होंने तपश्चर्या की थी वही पहले शरीरधारी और सृजनकर्ता थे। ब्रह्मा के चार मुखों का उल्लेख कालिदास में ने भी किया है और पुराणों में भी। कालिदास के अनुसार वे चतुर्मुख और वागीश थे। मत्स्य पुराण की कथा में यह कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मा के पांच मुख थे, जिनमें से एक मुख को शिव ने काट दिया था। इससे ऐसा लगता है कि विष्णु और शिव के सम्मुख ब्रह्म की महिमा और प्रतिष्ठा धीरे धीरे घटती गई, जो बाद में आकर और कम हो गई। बृहत संहिता और विष्णु धर्मोत्तर में उनकी मूर्ति बनाने का विधान दिया गया है। जिस प्रकार देश में विष्णु, शिव, सूर्य जैसे देवताओं के विविध मंदिर और मूर्तियाँ निर्मित हुए हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के न मंदिर बने न ही मूर्तियाँ निर्मित हुई। यह बात प्रमाणित करता है कि ब्रह्म का जनजीवन में कोई प्रभाव नहीं रह गया था तथा समाज में उनका धार्मिक महत्व नहीं के बराबर था। ब्रह्म की अधिकतर मूर्तियाँ विष्णु और शिव के पार्षद के रूप में बनी। ब्रह्म की सर्वाधिक महत्वशाली मूर्ति सिंध के मीरपुर खास में मिली, जो कांसे की बनी है। इन मूर्ति में चार सिर और दो हाथ हैं। एक में पुस्तक और अक्षमाला है तथा दूसरे में कमंडल। ऐसे शिव साई विष्णु के नाभि कमल पर ब्रह्म को बिराजते हुए अनेक मूर्तियों में देखा जा सकता है। ऊपर लिखे देवताओं के अतिरिक्त इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर आदि देवताओं का भी हिंदू समाज में पूजन अर्चन किया जाता था। धर्मभीरु जनता अपने इष्ट देवों की पूजा मंदिरों में करती थी और घरों में भी। घरों में देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां रखी जाती थी। व्रत उपवास के साथ साथ लोग धार्मिक पर्व मनाते थे। धार्मिक भावना से लोग तीर्थयात्रा भी करते थे और देश के विभिन्न भागों में जाकर स्नान, पूजन और ध्यान करते थे।